Om Shanti. 7th March 1995. अफ्रीका वाले कौन सी शक्ति अपनाएंगे? इन्हों को शांति की शक्ति पसंद है क्योंकि अफ्रीका में घमसान बहुत होता है ना, तो शांति की शक्ति पसंद है। तो शांति की शक्ति की निशानी है, जहां शांति होगी वहां सदा क्या होगा? सुख होगा, वहां सदा संतुष्ट होंगे, क्योंकि अशांति करती है असंतुष्टता। जहां संतुष्टता होगी वहां शांति होगी, और जहां शांति होगी वहां संतुष्टता होगी, और शांति की शक्ति वाला सदा ही खुश मिजाज होगा। जितनी शांति उतनी खुशी उसके चेहरे से जलन से अनुभव होगी। तो शांति की शक्ति की निशानी दिखाना, सदैव सबका चेहरा हर्षित हो, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। अपनी प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी को कोई छोड़ता है क्या? तो शांति की शक्ति की निशानी है सदा खुश रहना और खुशी बांटना। शांति की शक्ति से सहज मनसा सेवा कर सकते हैं। जितना शांत रहते हैं उतनी मनसा सेवा बड़ी शक्तिशाली होगी। तो अफ्रीका वाले ऐसे शांति के शक्ति का स्वरूप बन इस वर्ष का इनाम लेना। सभी इनाम लेंगे ना? अच्छा, रिजल्ट आती रहेगी। हर एक सेंटर के हर स्टूडेंट की रिजल्ट आती रहेगी। फिर जो नंबर आगे लेना, 3 नंबर को इनाम देंगे, बाकी 2nd नंबर देंगे। तो शांत रहना है, हलचल में नहीं आना, कुछ भी हो जाए शांत। तो आपकी शांति हलचल वालों को भी शांत कर सकती है। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाना। यह सेवा वाणी से नहीं हो सकती, मनसा से हो सकती है। 7th March 1995, बाबा अफ्रीका वालों से मिल रहे हैं। तो अफ्रीका वाले कौन सी शक्ति अपनाएंगे? इन्हों को शांति की शक्ति पसंद है क्योंकि अफ्रीका में घमसान बहुत है ना, तो शांति की शक्ति पसंद है ना। तो शांति की शक्ति की निशानी है, जहाँ शांति होगी वहाँ सदा संतुष्ट होंगे, क्योंकि अशांत करती है असंतुष्टता। जहाँ असंतुष्टता संतुष्टता होगी वहाँ शांति होगी, और जहाँ शांति होगी वहाँ संतुष्टता होगी। और शांति की शक्ति वाला सदा ही खुश मिजाज होगा। जितनी शांति उतनी खुशी उसके चेहरे चलन से अनुभव होगी। तो शांति की शक्ति की निशानी दिखाना, सदैव सबका चेहरा हर्षित हो, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। आपकी प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी को कोई छोड़ता है क्या? तो शांति की शक्ति की निशानी है सदा खुश रहना और खुशी बांटना। शांति की शक्ति से सहज मनसा सेवा कर सकते हो। तो शांति की शक्ति से को बाबा ने किसके साथ जोड़ा? संतुष्टता के साथ, और दूसरा खुशी के साथ। अगर एक हम त्रिकोण निकालें, त्रिकोण का एक कोना शांति, दूसरा कोना संतुष्टता, और तीसरा कोना खुशी। शांति है तो संतुष्टता है, और संतुष्ट है तो शांति है। शांति है तो खुश है, खुश है तो शांति है। शांति, खुशी और संतुष्टता, 3 चीजें हैं। अशांति का कारण क्या बताया बाबा ने? अशांत क्या करती है, कौन करती है? अशांत करती है असंतुष्टता, और असंतुष्टता का भी कारण अप्राप्ति, और अप्राप्ति का भी कारण इच्छाएं। जब तक मनुष्य के मन में इच्छाएं बहुत है तब तक वो शांत नहीं हो सकता। अध्यात्म का मार्ग शांति की तलाश का और खोज का मार्ग है। जो इस मार्ग पर निकल पड़ा है उसे अपनी इच्छाओं को कम करना होगा। यदि इस मार्ग में भी इच्छाएं वैसी ही बरकरार है तो शांति नहीं मिल सकती। और इच्छाएं दुष्पूर है, दुष्पूर अर्थात जो कभी भी पूर्ण नहीं होती। उनका स्वभाव उनकी फितरत में ही अपूर्णता है, कभी भी पूर्ण नहीं होती। पूर्ण होते ही एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा जागती है। जो हलचल, जो बेचैनी एक इच्छा की पूर्ति के लिए थी, वो इच्छा पूर्ण होते ही वो जो प्राप्त हुआ है वो व्यर्थ होता है। अब दूसरी नई दौड़ चालू होती है, फिर से वही अशांति, फिर से वही बेचैनी, फिर से वही मन की हलचल। और धीरे धीरे व्यक्ति जिस चीज को पाने के लिए इतनी भागदौड़ करता है वो चीज मिल तो जाती है, परंतु जो अशांति और बेचैनी के संस्कार बन जाते हैं उससे वो मुक्त नहीं हो पाता। इसके पहले भी कभी सुनाया था, किसी को घर चाहिए, अच्छा बड़ा घर चाहिए, अपनी सारी सुख चैन सब कुछ छोड़कर दिन रात पैसे कमाने के पीछे लगता है, घर बनाने के लिए, अपना खुद का घर। कब तक किराए के घर में रहेंगे, अपना घर चाहिए। 10 साल लगा दिया घर बनाने में, या 5 साल लगा दिया, 10 साल लगा दिया, एक दिन घर बन गया। घर बनाया था कि अभी अशांत है मन, अभी बेचैनी है, वो बेचैनी कम हो जाए, वो जो असुरक्षा का भाव है वो कम हो जाए। घर तो बन गया, पर घर बनने के बाद जो संस्कार बन गया है 5 साल का बेचैनी का, उसका क्या? मार्ग में जो बेचैनी का संस्कार बना वो फिर भी कायम है, उसने भी अपना घर उसके घर में बना लिया। तो मनुष्य की दौड़ शांति अगर चाहिए, पहले तो ये बात है कि चाहिए क्या वास्तव में। कहते तो है सभी शांत मन हो, मन शांत हो। बाबा ने कहा है, इसको इससे जोड़ा है कि जब तक मन शांत नहीं तब तक मनसा सेवा हो नहीं सकती। और मनसा सेवा तो सबसे अल्टीमेट सेवा है, सबसे टॉप मोस्ट लास्ट, उससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। कर्मणा सेवा से कुछ लोगों को सुख दिया जा सकता है, 10 लोग, 15 लोग, चलो 100 लोग। वाणी की सेवा, भाषण देंगे कितने के सामने देंगे, 100, 200, 10,000, 20,000, और टीवी में भी पहुंच जाएगा। अच्छा, जो टीवी नहीं देखते वो, जो आवाज सुनते नहीं वो, चाहे किसी भी माध्यम से सुनते ही नहीं, सब तक कैसे पहुंचेंगे? सब तक इसकी लिमिटेशन है वाणी की भी, कर्मणा की लिमिटेशन तो है ही है, वाणी की भी लिमिटेशन है। एक ही है जो बेहद है, और वो है सकाश, और वो है वाइब्रेशन। परमधाम में हम स्थित हो जाए, शिव बाबा ऊपर हम नीचे, और नीचे सारी आत्माएं, कैसे छूट पाएंगे वो, कैसे बचाएंगे अपने आप को हमारी सकाश से? हम यदि शांति की सकाश दे परमधाम में बैठकर, और कोई ने संकल्प कर लिया इस मृत्यु लोक में कि मैं अशांत रहूंगा, क्या छूट पाएगा हमारी शांति से? तो सकाश की सेवा अल्टीमेट सेवा है, द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट इफेक्टिव। ये एक ऐसा टूल है विच नेवर फेल्स, द अनफेलिंग टूल ऑफ सर्विस। तो उसके लिए मन कैसा चाहिए? शांत। शांत मन के लिए संतुष्टता, संतुष्ट मन के लिए इच्छाओं का कम होना। वही इच्छाएं अगर अध्यात्म के मार्ग में तो आ गए, परंतु जो इच्छाएं उधर थी वही एक अलग रूप उसमें धारण कर लिया। नाम की कामना, साधनों की कामना, संग्रह करने की कामना और ज्यादा की कामना, तो वही बेचैनी इस मार्ग में भी आ जाएगी जो संसार के मार्ग में है। क्योंकि इच्छाओं को यह नहीं पता कि हम सांसारिक है या आध्यात्मिक है। उनका स्वभाव है अशांति, उनका स्वभाव है अपूर्तता, अपूर्णता। किसी देवता के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था कभी। उस घोड़े को इच्छा हुई कि मैं और सुंदर हो जाऊं। उस देवता ने उसे समझाया कि तू सबसे सुंदर है। उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, मुझे और ज्यादा सुंदर होना है, द मोस्ट ब्यूटीफुल हॉर्स इन द वर्ल्ड बनना है। कल कहा था ना बाबा ने, मिस्टर हॉर्स बनना है। तो देवता ने उसे बहुत समझाया कि तू ही सबसे सुंदर है। उसने कहा नहीं, मेरे जो पैर है ना, टांगे बहुत ही छोटी मोटी मोटी है, पतली करो उसको थोड़ी। उसने कहा और? उसने कहा मेरी जो गर्दन है वो बहुत ही छोटी है, वो भी थोड़ी पतली करो और लंबी चाहिए। इतनी छोटी गर्दन से मैं इतना सुंदर नहीं दिखता हूँ। सुंदर व्यक्तियों की गर्दन पतली होती है और लंबी होती है। तो देवता ने कहा तथास्तु, और सामने ऊंट। जिराफ का ऊंट। तो उसने कहा ये नहीं मैं चाहता था, मैं जो पहले था वही ठीक था। हर व्यक्ति वह बनना चाहता है जो वो है नहीं, जो उसमें दूसरे में दिखता है ये चीज है। परंतु हर व्यक्ति अपने स्थान पर परफेक्ट है, अपने स्थान पर योग्य है। हमें दूसरे से सीखना गुण जरूर है, पर मैं वैसा ही बन जाऊं, वो जो एक कामना रहती है वो अशांत किए जाती है व्यक्ति को। तो एक है शांति, दूसरा है संतुष्टता, और तीसरा है त्रिकोण में खुश रहना और खुशी बांटना। खुशी क्या है? तुम्हारी अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, अपनी चीज, निजी वस्तु। तो प्रॉपर्टी को कोई छोड़ता है क्या? तो शांति की शक्ति की निशानी है सदा खुश रहना, खुशी बांटना। शांति की शक्ति से सहज मनसा सेवा कर सकते हैं। जितना शांत रहते हैं उतनी मनसा सेवा बड़ी शक्तिशाली हो। कल हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे, जितना मन शांत उतने ही शक्तिशाली वाइब्रेशंस उससे निकलते हैं। चाहे वो ये संकल्प करे या न करे कि मैं प्रकाश दे रहा हूं, मैं अभी इन आत्माओं के पास जा रहा हूं, इनको सकाश, उसको सकाश, ये सब तो ठीक है। परंतु जो मन शांत है स्वतः ही प्रकंपन शांति के वहां से फैलने लगते हैं। भारत के इतिहास में जो आश्रम थे गांव के बाहर जंगलों में, वो थोड़ी किसी को बुलाते थे, वो कोई आमंत्रण नहीं देते थे, लोग खिंच खिंच कर उनके पास आते थे। क्योंकि उन्होंने उनके मन को इतना शांत कर दिया था। तो जितना शांत रहते हैं उतनी मनसा सेवा बड़ी शक्तिशाली होगी। तो अफ्रीका वाले ऐसे शांति के शक्ति का स्वरूप बन इस वर्ष का इनाम लेना। सभी इनाम लेंगे ना, अच्छा, रिजल्ट आती रहेगी, हर एक सेंटर के हर स्टूडेंट की रिजल्ट आती रहेगी। फिर जो नंबर आगे लेना, 3 नंबर को इनाम देंगे, बाकी 2nd नंबर देंगे। तो शांत रहना, हलचल में नहीं आना, कुछ भी हो जाए। क्या कहा? कुछ भी हो जाए, कॉमा शांत। तो आपकी शांति हलचल वालों को भी क्या कर देगी? शांत कर देगी। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाना। यह सेवा वाणी से नहीं हो सकती, मनसा से हो सकती है। तो क्या करना है? मन को शांत कर देना है। बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, हम शांत हैं। वास्तविक शांति अर्थात वो नहीं कि हम एकांत में चले गए, निर्जन स्थान पर चले गए, वहां किसी से मिलना नहीं, वहां से किसी से बात नहीं करना और मौन हो गए पूर्ण रीति से और फिर अनुभव कर रहे हो कि कितनी शांति है। वाह, किसी के संपर्क में ही नहीं, वो एक मार्ग है अलग हो जाना। दूसरा है सबके बीच रहना, दूसरा है हलचल में रहना, दूसरा है भीड़ में रहते हुए भी उस एकांत का अनुभव। वास्तव में यही वास्तविक शांति है। मन को ऐसी ट्रेनिंग देना कि जिसमें वो कठिन से कठिन परिस्थिति में शांत रहे, यही अध्यात्म है। उस परिस्थिति में जहां कोई हलचल ही नहीं है वहां शांत रहना तो बहुत आसान है। प्रैक्टिस तो करनी है, परंतु मेन जो फील्ड है ऑनलाइन लाइव जो है वो बैकग्राउंड है प्रैक्टिस का, परंतु मेन जो चीज है हमको इसके बीच, वही वास्तविक शांति है। अगर हम केवल यही समझते हैं कि वहीं रहते हैं बैकग्राउंड में और फील्ड में आते ही नहीं है, और ये समझ ले कि मेरा मन एकदम शांत हो गया, तो ये भ्रम है। उसकी जो टेस्ट है वो फील्ड में होती है। सुबह अमृत वेले बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, वाह, मुरली में लगता है सब अपने भाई बहने बैठे हैं, ऐसा परिवार कहां मिलेगा, आंसू आंखों से, ऐसे चार धाम, ऐसा परिवार, ऐसी मुरली जो चल रही है, वाह, ये बैकग्राउंड है, यहां मन शांत है। मेन कहां चालू होता है, स्टेज आने के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 9 से 5, वो है स्टेज। वहां अगर कोई शांत है तो वास्तविक शांति है, तो वास्तविक सारी इसके पहले का जो है वो तैयारी मात्र है बस। अभी यहां जो हम बैठे हैं, अगर कोई सोचे कि वाह कितनी शांति है यहां पर, परंतु ये केवल तैयारी है। कोई सोचे कि बस ऐसा ही चलते रहे दिन भर, उसमें जाना ही नहीं पड़े, संपर्क में आना ही नहीं पड़े किसी के, वही सारी हलचल है, वही सारी खिटपिट है, तो वो वास्तविक शांति नहीं है। टेस्ट जो होती है वो होनी चाहिए, हर चीज की टेस्ट होनी चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मन शांत हुआ है। एक बार सुनाया था ना, एक सन्यासी बचपन से चला गया, युवा काल में चला गया हिमालय में, कई वर्ष तक तपस्या की, 10 वर्ष 20 वर्ष, फिर उसको लगा मेरा मन कितना शांत हो गया है, क्रोध तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है, 20 साल से क्रोध ही नहीं किया, वहां पर सोचा मैंने क्रोध को जीत लिया है, मन एकदम शांत हो गया है। और फिर नीचे उतरा पर्वत से नहीं वो दूसरा, नीचे उतरा भिक्षा मांगने के लिए, किसी घर में गया और देखा वहां एक बच्चा रो रहा है दरवाजे पर ही, और वो भिक्षा मांग रहा है और कोई आ नहीं रहा है, और वो बच्चा जोर जोर से रोए जा रहा है। इसने तो सोचा था मेरा मन शांत हो गया, परंतु अभी रोते हुए बच्चे को पहले उसने समझाया कि भाई शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, पर जब शांति नहीं हो रहा तो एकदम से क्रोध प्रकट हुआ। इतना समझाने के बाद भी शांत नहीं होता है, बच्चा फिर भी शांत नहीं हुआ, परंतु इसने सोचा था कि इसका क्रोध विलीन हो गया। क्रोध को जीतना या क्रोध खत्म करने की ये विधि नहीं है कि सबसे अलग हो जाना, क्रोध तो आता ही सबके बीच में है ना, फिर उसको खत्म सबके एब्सेंस में नहीं किया जा सकता, हाँ तैयारी की जा सकती है, परंतु पीस शांति की परीक्षा जो है वो कहां होती है, हलचल में। सब हलचल के बीच अगर कोई शांत है वही वास्तविक शांति है, और वही हमारा लक्ष्य है, और वही टेस्ट होनी चाहिए बार बार, परिस्थिति आनी चाहिए, तब पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। किसी एक राजा ने कभी अपने राज्य में एक निखिलेश भाई अनाउंसमेंट कराई कि एक ऐसा चित्र बना के लाओ जिसमें परफेक्ट पीस झलकता हो, एक ऐसा चित्र बना के लाओ, कि ऐसी तस्वीर कि जिसमें एकदम संपूर्ण देखते ही मन शांत हो जाए, ऐसा कोई चित्र बना कर लाओ। हजारों चित्र आए, उसमें से दो चित्रों को चुना गया। अब दोनों में से चुनाव करना था कौन सा सर्वोत्तम है। पहला जो चित्र था वास्तव में ऐसा चित्र था कि देखते ही मन शांत हो जाए। उस चित्र में था एक झील, निस्तरंग झील का पानी, कोई हलचल नहीं। झील के आसपास चारों ओर विशालकाय पर्वत एकदम शांत, पर्वतों के ऊपर बादल, आसमान वो भी एकदम शांत। ऐसा वो चित्र था जैसा हमारा नक्की झील, झील, पर्वत, आसमान और बादल। तो राजा उस चित्र को देखता है, कहता है कि बस यही चित्र है, इसको देखकर ही एकदम शांति का अनुभव होता है, इससे अधिक और क्या शांति हो सकती है। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, उसमें झाड़ भी है, पेड़ भी है, कुछ नहीं, एकदम शांत दिख रहा है सब कुछ। तो ये पहला चित्र। दूसरा चित्र वो भी शांति का चित्र था, बनाया था शांति का चित्र। उस चित्र में उबड़ खाबड़ पर्वत, सख्त पर्वत थे, कठोर पर्वत, और बादल थे ऊपर, आसमान था एकदम गुस्से में, आक्रोश से भरा हुआ बादल, और बारिश हो रही थी, तेज बारिश, और उसमें बादल और बिजली, बिजली की कड़कड़ाहट, बिजली कड़क रही थी, बादल थे, आक्रोश से भरा हुआ आसमान था, पर्वत थे, सख्त पर्वत, अनीवन, उबड़ खाबड़ पर्वत थे, और एक झरना, वो झरना भी एकदम खतरनाक, ऐसा झरना बह रहा था, फोमिंग वाटरफॉल, झाग से भरा हुआ वो झरना, आवाज करता हुआ झरना, भयावह चित्र था देखने में। परंतु उस राजा ने पहले देखा कि ये चित्र, ये कोई शांति का चित्र है, ये तो अशांति का चित्र नजर आ रहा है। परंतु देखा कि वो जो झरना था उसके बाजू में उस पर्वत पर एक झाड़ है, वो झाड़ भी हिल रहा है, परंतु वहां पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है, और वो चिड़िया अपने घोंसले पर शांति से बैठी हुई है, कोई हलचल नहीं। राजा कहता है ये है वास्तविक शांति। पर्वत भी ऐसे, बादल, बिजली, चारों ओर आवाज, शोरगुल, और उसमें कोई शांत रहे, ऐसी परिस्थिति में यही वास्तविक शांति का चित्र है। तो चारों तरफ हलचल और उसमें हम शांत, ये कसौटी है, इस पे उतरना है खरा, तो कहेंगे मन शांत हुआ। तो सारी जो दौड़ है अध्यात्म की, इस ज्ञान योग की, वो इसलिए ही है कि मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, पीसफुल हो जाए, क्योंकि पीसफुल माइंड से ही पीसफुल वाइब्रेशंस निकलेंगे। जगत को पीस हमें प्रदान करना है, कैसे करेंगे, स्वयं के मन को शांत करके। बाहर हम कुछ नहीं कर सकते जिससे पीस हो, सारा कार्य आंतरिक है। तो मनसा सेवा के लिए क्या करो, क्या कह रहे हैं बाबा, मन को शांत कर दो। तो शांत रहना, हलचल में नहीं आना, कुछ भी हो जाए शांत, ये इशारे दे रहे हैं 95 की मुरली है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी अशांति का वातावरण हो, किस भी तरह की न्यूज आ जाए, किसी की मृत्यु, किसी की दुर्घटना, कहीं प्राकृतिक आपदा, कोई बीमारी, कोई बड़ा नुकसान, डिजिटल वर्ल्ड में कोई हलचल, कुछ भी, हमें निराधार निसंग बनना है। ये संसार में हमारे जो छोटे छोटे आधार है उन सब से हमें मुक्त होना है। ये आंतरिक साधना है। बाहर से चीजों को छोड़ने से कुछ नहीं होगा। बाहर से तो छोड़ दिया, परंतु अंदर से तो और ही सघन होता है। सारी साधना स्वयं को निराधार करने की है। पुरुषार्थ में कोई आधार नहीं। छोड़ो तो छूटे मुरली, याद है ना? उसमें कुछ पक्षी पकड़े हुए हैं। पकड़ने का एक कारण बताया था, पुरुषार्थ में आधार, निराधार नहीं। तीन प्रकार के पक्षी थे, चतुर, कमजोर और भोले। चतुर जो थे वो ये भी चाहते थे, वो भी चाहते थे। कमजोर चाहते तो थे उड़ना, परंतु उड़ नहीं पाते थे। कमजोर भोले को तो यही नहीं पता है उड़ना भी है। ऐसे तो यहां कोई नहीं है। और सारे पक्षियों ने पकड़ के रखा था डाली को, शाखा उपशाखा है वो आधार। पुरुषार्थ में आधार बनाना किसी को, पुरुषार्थ में भी किसी को आधार ना बनाना। पुरुषार्थ में भी ना तो किसी की क्लास आधार हो, ना किसी का चिंतन आधार हो, ना किसी का प्यार आधार हो, ना किसी का सपोर्ट, ना किसी के इंस्पिरेशन, कुछ भी नहीं। इन सब से मदद जरूर लेनी है सबसे, परंतु हम अकेले, क्योंकि आज जो है वो कल नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। इसके लिए स्वयं को निराधार करते चलना है, सब आधार से। हद है सब में, कहीं ना कहीं आज जिसे हम बहुत अपना आदर्श समझते हैं, जब उसके नजदीक जाएंगे तो कल उसमें दोष दिखाई देंगे। इसके लिए दूरी ठीक है। इसके लिए जिसे अपना आदर्श मानते हो उससे तो दूरी रहना चाहिए। किसी भी तरह से ज्यादा संपर्क करने की प्रयत्न नहीं करो, नहीं तो नुकसान तुम्हारा है। क्योंकि अभी आदर्श समझते हो और पुरुषार्थ करते हो, शायद वो खुद ही उसका स्वरूप ना हो, परंतु उसको आदर्श समझ के हम पुरुषार्थ करते हैं। जब एक दिन पता चल जाएगा ये तो उसमें है ही नहीं, तो हम दुखी हो जाएंगे। फिर कहां ढूंढेंगे ऐसा आधार? एक तो ढूंढा था मुश्किल से, उसमें भी दोष निकले, उसमें भी क्रोध निकला। हमने सोचा था इसने क्रोध को जीत लिया है। जिस दिन उसको क्रोध करते हुए देख लिया, उसका विकराल रूप, बड़ी मुश्किल से चुनाव किया था। तो पुरुषार्थ में स्वयं को अकेला कर देना। एक ही आधार है यहां, ओनली वन, और कोई नहीं। उसके अतिरिक्त किसी को भी आधार बनाए तो धोखा होगा और दुख होगा। इसके लिए शांत, संतुष्ट, खुश, ये तीन चीजें बोलिए बाबा। स्वयं को बार बार देखते रहना, शांत कितना हो, हर्ष खुश कितना हो, संतुष्ट कितना हो। भगवान मिल गया फिर भी असंतुष्टि, यही विडंबना है। भगवान मिला, सब कुछ मिला, फिर भी मन असंतुष्ट है, मन के किसी कोने में। हाँ, एक चीज के लिए असंतुष्टता जरूर चाहिए, पुरुषार्थ, डिवाइन डिस्कंटेंट, ये जरूर चाहिए। पुरुषार्थ में असंतुष्टता चाहिए कि और करना है, और करना है, और करना है, इसमें बेचैनी चाहिए। इसके लिए नींद फिट जाए, डिवाइन डिस्कंटेंट। इससे पीड़ित अगर हम हैं तो बहुत अच्छा है। यह पीड़ा होनी चाहिए कि क्या करे और कौन क्या कर रहा है और ज्यादा हमसे, जरा देखू तो। हमने तो जो कुछ करना है कर लिया, और कौन कौन क्या क्या, हर एक कुछ ना कुछ तो हमसे ज्यादा कर ही रहा है पुरुषार्थ में, कोई ना कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ कर ही रहा है कोई, शायद वो हम नहीं कर रहे। हर एक से सीखना जरूर है, परंतु वो एक असंतुष्टता पुरुषार्थ में, और आगे और आगे और आगे और आगे, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जितना पा लिया, जितना पुरुषार्थ कर लिया, उसमें रुकना ही नहीं है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। जब तक भगवान खुद ना आके कहे धरती पर बस, जैसे वो संसार में तपस्या करते थे ना लोग, तो वो पूरा ये हो जाता था उनको, एक ये तैयार हो जाता था, पर्वत तैयार हो जाता था उनके शरीर के ऊपर मिट्टी का, और उधर से भगवान प्रकट होते थे, वो टूटता था और कहते थे अब मांगो क्या चाहिए। घास उगाती थी उसके ऊपर। जब तक भगवान ऊपर से परम धाम में आकर हमारे सामने आकर कहे ना कि बस स्टॉप, बहुत हो गया, तब तक तब तक हमें रुकना नहीं है, रुकना है ही नहीं, कभी नहीं रुकना, बस बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना। देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। कुछ पूछना नहीं, बस आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, कहीं पर भी नहीं रुकना और किसी के लिए भी नहीं रुकना। कोई कहे मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, नहीं, एकला चलो रे, यही पुरुषार्थ है। और हां, जितना हम व्यक्तियों के आधार से मुक्त होने लगते, हमको लगता है पुरुषार्थ में ये बहुत ज्यादा आधार है मेरा, जिस दिन हम उस व्यक्ति से मुक्त होते एक अनोखी शक्ति भर जाती है, एक अद्भुत सा अनुभव होता है, तब वास्तविक पता चलता है कि मुझ में ही कितनी शक्ति है कि निराधार चल सकते हैं। अच्छा, तो आज हम आबू निवासियों को सकाश देंगे, जो भी यहां रहने वाले हैं, जिनके गांव में भगवान आया है और वो बेखबर है, जिनके घर के पीछे, जिन गलियों में उनका बचपन गया, वहां भगवान आया और उन्हें पता ही नहीं। हमारे ओपीडी में कई लोग आते हैं, माउंट के रहने वाले, कहते हैं हमने आपके ब्रह्मा बाबा को देखा है, मम्मा को देखा है, यहाँ आपके सेंट सोफी सोफिया स्कूल, सेंट मेरी स्कूल, यहाँ पर जो सिस्टर्स है बहुत पुराने पुराने हैं, यहाँ के कुछ आश्रम है, वो सब वहाँ के जो साधु है, रघुनाथ मंदिर उधर का, वो मंदिर पीस पार्क के उधर के कुछ लोग, वो कहते हैं हमने ब्रह्मा बाबा को देखा है। यहाँ के दुकानदार बहुत सारे वो कहते हैं आपके बाबा बैठते थे वहां पर, खरीदने आते थे हमारे पास कुछ कुछ तो कितना है उन्होंने, कई लोग क्योंकि माउंट के जो रहने वाले लोग हैं 1950s और 40s में आ गए हैं, तब से यहाँ रह रहे हैं कुछ लोग, ये सब ने देखा है। परंतु हम बहुत बार सोचते, देखो इनका भाग्य, यहाँ जन्म लिया, यहीं रह रहे हैं, परंतु उन्हें अभी तक नहीं पता कि ये है क्या। तो ऐसी है, ऐसा ये अद्भुत ड्रामा है। अच्छा, वो तो है नहीं, ये उनको, ये सबको सकाश है, मोस्टली उनको कि जो जिन्हें अभी तक संदेश मिला नहीं है, उनके लिए।